बस तस्कीन हो गई।
अरे क्या कहें,
अब बस भी करो, क्या तुम्हें मेरे बाबा की बातों पर यकीन नहीं है?
मैंने ऐसा कहा?
तो फिर क्यों उस वक्त से मुझसे बात नहीं कर रही हो?
क्योंकि मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि जो औरत ऐसे रो रही थी वो झूठ कैसे बोलेगी।
तो फिर मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं ना?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
तो फिर इसका मतलब क्या है? गनीमत है, तुमने खुद रसीद देखी थी।
सलाम दादी।
वालेकुम सलाम बेटी।
इतना ना रोया करे ना।
क्या करूं, गई थी अपने दादा जान को देखने, कैसे हैं वो।
आप तो नहीं चाहते कि मैं झूठ बोलूं ना, बस
मेरे
उनके लिए दुआ
अल्लाह,
कीजिए दादी। भूपी जान खुदा हाफिज।
कहाँ चली बेटा, इफ्तार नहीं करोगी क्या?
नहीं भूपी जान, एक जरूरी काम है, जाना है। दादी का ख्याल रखिएगा बस।
मैं भी साथ चलूं?
नहीं शुक्रिया।
क्या हुआ है मेहताब को? क्या हुआ?
कुछ नहीं, उससे पूछ लेती।
क्या मतलब, तुमसे कुछ हुआ है? सासान तुमसे कह रही हूँ, क्यों मेहताब ऐसे चली गई?
कुछ नहीं मोहतरमा, को सबकी बात पर यकीन है सिवाय हमारे बाबा के।
तुम्हारे बाबा? आखिर इतना क्यों घुमा फिरा कर बात कर रहे हो? मैं भी तो
अभी
समझूं।
छोड़िए, भी आपको मौका मिलना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम नरगिस साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, खुश आमदीन। अंदर आइए, यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए अंदर चलिए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है ना? माफ़ कीजिएगा, हमने डिस्टर्ब
किया। कोई
बात
नहीं, कोई बात
माफ़
नहीं।
कीजिएगा। प्लीज़ इतनी जहमत ना करें, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी।
ये कैसी बात हुई मैडम, कैसी जहमत? जहमत तो आपने की जो यहाँ तशरीफ़ लाई। आइए इफ्तार कीजिए, रोज़े की हालत पर ठीक नहीं होगा।
नहीं बहुत शुक्रिया, यही चाय काफ़ी।
अरे
देखिए नरगिस साहिबा, मैंने आपके सिलसिले में सरमद साहब और मुबीनी साहिबा से बात की, दोनों ही कहते हैं दादाजान ने आपको 10 लाख दिया था।
10 लाख? मैडम आप ज़रा हमारी हालत तो देखें। वाकई आपके ख्याल से मेरे पास 10 लाख पैसे होते, मेरी और मेरे बच्चों की हालत ये होती? खाली रोटी से इसका पेट भरती? नहीं मैडम, अगर मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने मुझसे झूठ का इल्जाम तो ना लगाइए।
मैंने कब कहा आप झूठ बोल रही हैं? शर्मा साहब ने वो रसीद मुझे दिखाई जिस पर आपने निशान लगाया है।
रमजान के वक्त की कसम, माह रमजान की कसम, कुरान की कसम खाती हूँ गूंगी इस दुनिया से मर जाऊं अगर मैंने झूठ कहा हो। सरमद साहब ने 1 लाख तुम्हें मुझे दिया और एक कागज भी मेरे सामने रख दिया और कहा इस रसीद पर दस्तखत करो, ये हाजी को देना है। मैं भी तो जाहिल हूँ, निशान लगा दिया। मैंने तमाम मुसीबतें इसलिए बर्दाश्त की है कि अपने बच्चों का हराम लुकमा ना दूं। अब तो आपसे भी कुछ नहीं चाहती हूँ मैं, अब आप जा सकती हैं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
प्लीज ऐसा ना कहें, इस कुरान की कसम मैं सिर्फ आपके मदद के लिए आई हूँ। मुझे नहीं पता सरमद साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं। मैं वादा करती हूँ उसकी तह तक पहुँचूँगी, लेकिन एक बात को अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे यकीन है कि दादा ने आपको मदद करने की कोशिश की होगी। नरगिस साहिबा, ये मुझसे कबूल कर लीजिए,
मुझे किसी सदके की जरूरत नहीं है,
माफ कीजिए।
मैं सिर्फ एक काम की तलाश में हूँ और जिससे।
प्लीज ऐसे बात ना करें, ले लीजिए ना इसको, ये उस पैसे का आधा हिस्सा है जो दादा आपको देना चाहते थे। आज सिर्फ इतना ही इकट्ठा कर पाई, मैं वादा करती हूँ बाकी भी आज कल मैं पहुँचा दूंगी। मैं किसी भी काम से दरीग नहीं करूँगी, मैं आपको फैक्ट्री में भी काम दिलाऊंगी। मुझे यकीन है कि दादा जिंदा होते तो यही करते। नरगिस साहिबा, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, खुदा के वास्ते मेरे दादा जान को माफ कर दे, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है।
शाबाश शाबाश मेरी बेटी, मुझे यकीन था कि मेरी महताब सबसे ज्यादा मेरे काम आएगी।
तुम्हारी पोती की इस अमल खैर से तुम्हारे बहुत से गुनाह माफ कर दिए गए हैं आजी।
लेकिन हैफ के मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी माँ उसकी ऐसे लड़के से शादी करवाना चाहती जिसे वो नहीं चाहती। मैं भी उस रात उस मसले को हल करना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। अगर आप मुझे सिर्फ चंद घंटे मौका देते तो मैं सब कुछ ठीक कर देता।
मालूम है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था।
मेरी नजर में इस वक्त महताब की किस्मत ज्यादा अहम है।
समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते। शायद यही अमल खैर जो अंजाम दिया उसकी तमाम जिंदगी की किस्मत बदल जाए।
सच कहते हो? यानी मुमकिन है इंसान एक अच्छा और बुरा काम करे और उसकी किस्मत बदल जाए।
الله لا يضيع اجر المحسنين خدا عندي علم کبھی بھی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا
دیکھا تم نے अब मेरी बात पे यकीन आया? मैंने कहा था ना कि अपने बहनों को किसी लम्हे मत छोड़ना, जरूरत पड़े तो 100 तलबकार भी बना सकता है।
महताज, मैं उस औरत से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मेरे ख्याल में उसने वहां जाकर ख्वाहिश की हुई कि उसको काम मिल जाए।
हाँ, और तुमने यकीन कर लिया? कैसे पता कि खुद सरमस ने ही सौरत को महताब के पास पैसे लेने के लिए भेजा हो?
क्या बकवास कर रही हो तुम, वो खुद भी शॉक्ड हो गया था ये सुनकर के वो महताब के पास गई है।
ओहो खुसरो, अब मैं तुमसे क्या कहूँ कि पूरी दुनिया को अपनी तरह ही सीधा समझते हो। अभी इस वक्त उसने एक ही को भेजा है, कल देखना 100 लोगों की लाइन लग जाएगी। क्या उसने नहीं कहा था कि फैक्ट्री के तमाम हिसाब किताब की डील रखता है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है?
असल में इसी मसले ने थोड़ा सा मुझे उलझा रखा है।
थोड़ा उलझा रखा है, इससे कहीं ज्यादा तुम्हें परेशान होना चाहिए। देखो, मुझे यकीन है कि इस औरत को भी उसी ने भेजा होगा महताब के पास, वरना उसे तो फैक्ट्री में जाना चाहिए था। कैसे हॉस्पिटल पहुंच गई महताब के पास?
मेरा दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है, पागल हो गया हूं, कोई चीज सेट नहीं बैठ रही है। एक तरफ से बाबा का मसला, एक तरफ से अम्मी की वो हालत, एक तरफ से वकील और बाबा का वसीयतनामा।
खुदा का शुक्र है कि कम से कम वसीयतनामे की जगह महफूज है सरमस के हाथों। तुम औरत के मामले को हल्का मत लेना।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम
सलाम। बेटी कहाँ थी अब तक?
मैंने फोन करके अम्मी से कहा तो था कि अफ्तार पे कहीं जाना है।
कहाँ बेटा? ये हॉस्पिटल और वो औरत का क्या मसला है?
आपको कैसे पता चला?
जब तुमने फोन किया तो मैं सरमस के पास था। ये औरत कौन है बेटी, क्या कहती है?
अरे कुछ नहीं, बेचारी एक ड्राइवर की बीवी है जो दादा की फैक्ट्री में काम करता था। मैं अभी वहीं गई थी।
उसके घर? अरे वहाँ क्या करने गई थी?
नहीं पता, मैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अब नहीं जानती, वो बेचारी औरत को जैसे मैंने देखा है, अगर अपने हक तक पहुंच गई होती तो ऐसे हालत में ना होती।
फिर कहो कि मैं शक करती हूँ।
बेटा ये बताओ, तुम्हें तो कहा था ना कि उसने वो रसीद भी तुम्हें दिखाई थी।
हाँ, लेकिन एक अनपढ़ औरत को क्या पता कहाँ निशान लगा रही।
मेरी लाल, मेरी बेटी, जाहिल आदमी इतना भी बेवकूफ नहीं होता कि हर पेपर पर निशान लगा दे।
ओहो खुसरो, तुम अब भी वही बात कर रहे हो। उस बेचारी को कहाँ से पता होता कि उस पर क्या लिखा हुआ है? उसको असल पैसे की खबर ही कहाँ से थी? सरमस ने 1 लाख देकर कहा होगा कि इस कागज पर दस्तखत कर दो, उसने निशान लगा दिया।
अरे महताज, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अकल में ये बात नहीं आती कि 9 लाख तुमान की वजह से अपनी इज्जत दांव पर लगा दे। और हाँ, कैसे पता कि वो सच ही कह रही हो?
ये अपनी बेटी से पूछो जिसने उसकी जिंदगी की हालत देखी है।
मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सिर्फ देखी हुई बात बता दी। मुझे मालूम है कि वो अपने एक वक्त की रोटी के मोहताज है।
अगर उस बेचारी ने 1 मिलियन लिए होते तो उसकी हालत इस वक्त ऐसी ना होती।
उसने तलब की मांग भी नहीं की है, सिर्फ काम की तलाश में है। मैंने उससे मदद करने का वादा कर दिया। बाबा प्लीज उसकी मदद कर दें।
ठीक है, मैं ही इस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। उससे कहना एक बार फैक्ट्री आए, देखें क्या कर सकते हैं।
शुक्रिया।
आप ध्यान दें कि कोई आपको टोपी ना पहना दे, एक ज्यादा चौड़ी टोपी।
सरमस साहब, जनाब
जो भी काम हो कल देख लूंगा, आज मैं बहुत थक गया हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। वाह भाई, खुसरो साहब, आप इधर कैसे?
क्या ऐसे देख रहे हो जैसे जिन देख लिया?
ये कैसी बात है, लेकिन आप यहाँ कैसे?
मैंने सोचा कि बाबा की हालत तो ऐसी है, मैं ही आकर जरा कुछ काम वाम देख लूँ।
हाजी साहब के बकौल बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सरमस मर गया है कि आपको जहमत की ज़रूरत है? क्या मैं अपना काम सही नहीं कर रहा हूँ? हैं
नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जसारत नहीं की कि आपकी जगह आकर ले लूं।
मेहताब, बेटी ने आपसे कुछ कहा है?
मेहताब, किस बारे में?
उस गुदर्स की बीवी और दूसरे मसाइल के बारे में। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ आई थी।
कह तो रही थी कि वो काम की तलाश में और तुमने उससे कुछ वादे किए, लेकिन मैंने सोचा जब तक शॉपिंग सेंटर का कोई हिसाब किताब पता नहीं चलता तो उसे फैक्ट्री में रख लूँ, शायद उसके हक में कुछ बेहतर हो जाए।
है जो आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, और शायद
मैंने कहा तो मैं माली मसाइल को खुद देखना चाह रहा हूँ। आपको वो परेशानी है?
नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। कोई बात ज़रूर हो गई जो आप अपनी कंपनी छोड़कर यहाँ आए हैं और कुछ करना भी चाहते हैं। शायद कोई ख़ास बात हो जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, शायद हम बकरी।
समस्त, तुम अकेले तो सारे काम कर नहीं सकते हो, मैंने सोचा शायद ऐसे तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाए।
कोई बात नहीं, तो जब आप यहाँ काम कर रहे हैं तो मैं भी जाके अपना काम करता हूँ, कोई मुश्किल तो नहीं है?
नहीं, जा सकते।
चलता हूँ।
अरे हाँ सरमस्त
जी,
वो रसीद जो गुदर्स की बीवी से ली थी वो लाना ज़रा, मैं देखना चाहता हूँ।
ज़रूर।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो दूध तुमने पिया है वो हलाल हो, शाबाश बेटा। मैं भी देखूं कि इस बिल्ली के बच्चे को कैसे फंसाते हो।
तैयार हो हाजी, चलें।
तैयार किस लिए?
अब अगला कदम उठाना होगा, अपने माँ बाप की रजाएं हासिल करना है।
मुमकिन है मुझे अलग रखो, तुम खुद ही से देख लो ना।
मैं जो मदद कर सकता था कर चुका हूँ, अब मेरे पास में कुछ नहीं। देखो, तुम्हारे पास कुछ बचा है जो हमारे बरज़ख़ जाने की चाबी बन सके? कोई ऐसा खालिस काम जो सिर्फ खुदा के लिए किया हो?
तो फिर तुमने सोच लिया है?
मैं कर भी क्या सकता हूँ?
तो तुम भी खुदा के वास्ते मुझसे सच बोलो, कोई फायदा है? मैं अपने माँ बाप से नजर तक नहीं मिला सकता, अगर वाकई उनसे मिलना जरूरी है तो क्या उनके राजी होने का इम्कान है?
मैं भी तुम्हारी तरह इसके अंजाम से नावाकिफ हूँ। अब ये तो उसी वक्त पता चलेगा कि तुमने उनके साथ क्या क्या किया है और कैसे उनकी रजायत हासिल करते हो।
फरिश्ते तो तुम हो भाई, मासूम हो, इल्मे गैब जानते हो, क्या तुम इल्मे गैब नहीं रखते?
ठीक है कि हम गुनाहों से मासूम हैं, लेकिन सब कुछ का इल्म हमारे पास नहीं है। हमारे पास वही इल्म है जो हमें अता हुआ है, वो भी हमारे मर्तबे और मकाम के मुताबिक। हाजी, ये रात तुम ही को तय करनी है और तुम ही को इसकी इंतहा तक पहुंचना है। अलबत्ता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अपने इख्तियार के दायरे में ही मदद कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसा खालिस अमल मिला जिससे हम बरज़ख जा सकते हैं?
हाँ, तुम तो खुद ही जानते हो कि 2 साल से मैंने नज़र की है कि माह मुबारक में मोहल्ले की मस्जिद में अपने बाप के लिए इफ्तारी दूंगा। ये तो कबूल है ना इंशाल्लाह?
उसका अजर व सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन उसी वक्त तुमने कुछ शर्तें रखी थी जिसकी वजह से वो काम तुम्हारे बरज़ख़ जाने का जवाब नहीं बन सकता।
कैसे शर्त तो शुरू? मुझे तो कुछ याद नहीं।
ठीक है, अगर याद नहीं है तो उसी जमाने में वापस जाते हैं कि जब ये नजर की बात तुम अपनी बीवी से कह रहे थे।
मैंने तो फिर से कोई काम करना चाहा है, आप कोई नाज नखरे वगैरह नहीं करेंगी?
हाजी, मैं कौन होती हूँ जो नेक काम में नहीं कहूँ? मैं ये कह रही थी कि अगर इफ्तार कराना ही है तो क्यों इस महल्ले में? यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके हालात अच्छे हैं। मैं कहती हूँ कि अपने वतन चलते, वहाँ की मस्जिद में इफ्तार कराते हैं, वहाँ 4 गरीब भी हैं, दस्तरखान पे बैठेंगे तो उसका सवाब आपके वालदैन को मिलेगा।
कभी कभी आप भी ऐसी बातें करती हैं। अब 20 साल बाद हमें कौन जानता होगा कि हमारे माँ बाप के लिए फातिहा पड़ेगा यहाँ तो फिर भी चार लोग हैं जो हमें जानते हैं।
हाजी साहब, जब वो इफ्तार के बाद फातिहा पढ़ेंगे तो आपके वालदैन को सवाब तो सारा मिल ही जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आस पड़ोस और रिश्तेदार जाने कि आपने इफ्तार कराया तो वो एक अलग बात है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अब तक कौन सा काम दिखावे के लिए किया था कि ये दूसरा हो?
देखिए हाजी साहब, बातें ना बनाइए, ऐसा काम कीजिए जो खुदा के लिए हो। ये बात अहम नहीं है कि लोग जाने कि उसका बानी कौन था या ना जान सकें।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं मानता हूं। तो अगर किसी ने पहचान कर किसी के लिए फातिहा पढ़ी तो इसका नुकसान क्या है? क्या आप नहीं चाहती कि थोड़ा सवाब मुझे भी मिल जाए? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, किसी ने मेरे लिए शायद दुआ नहीं की।
तुमको दुआ की जरूरत नहीं थी हाजी, और अपने मां बाप की मगफरत के लिए भी वो काम नहीं किया था। तुम ज्यादा चाहते थे कि आस पड़ोस वाले कहें वाह भाई वाह, हाजी भी क्या इंसान है, इतने साल के बाद भी अपने मां बाप को नहीं भूले हैं।
मैंने कब ऐसी, ठीक है बाबा, असल मैं चाहता था कि दूसरों के सामने मुझे दूसरी नजरों से देखा जाए, मैं मानता हूं। लेकिन बहरहाल कुछ मोमिनों को इफ्तार कराए कि नहीं, कुछ सवाल तो इसमें से मुझे दे दो। क्या इसका सवाब भी मुझे नहीं मिलेगा?
नहीं हाजी, सवाब तो मिलेगा, लेकिन चूंकि तुम्हारी नीयत इस काम में खालिस नहीं थी और खुदा के लिए 100% नहीं किया था, सो हब्त हो गया, ऊपर नहीं आया।
हब्त हो गया? हब्त क्या है फरिश्ते साहब? फरिश्ते साहब, फरिश्ते साहब,
हर वो काम जो इंसान करता है अगर 100% खुदा की खुशी के लिए ना हो, हब्त हो जाता है। إليه يصعد كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، उसकी जानिब सिर्फ अच्छा काम जाता है और अच्छा किरदार उसे वहां तक पहुंचाता है। वो अमल खैर जो तुमने किया था हाजी, वो आसमान तक नहीं पहुंचा, तो फिर वो काम भी तुम्हारे बरजख में जाने का सामान नहीं बन सकता।
अजीब बात है।
अच्छा ये सब छोड़ो, सोचो कोई दूसरा काम भी याद आता है या नहीं।
वो बम का जलजला याद है? मैंने 3 ट्रक खाने पीने की चीजें वहां भेजी थी। बाखुदा ये तो सिर्फ खुदा के लिए था, उन बेचारों के लिए। हंसना तो खूब जानते हो, मैं जब भी कोई अच्छे काम या अमल के बारे में बताता हूं कि जो सवाब के लिए था, तो उसके जवाब में तुम्हारी हंसी मुझे मिलती है। खुदा की कसम वो काम सिर्फ खुदा के लिए था।
वाकई सिर्फ खुदा के लिए था हाजी, कोई भी नीयत उसके पीछे नहीं थी।
वाकई नहीं थी?
तो फिर पहले क्यों एक ही ट्रक भेजना चाह रहे थे? लेकिन जब सरमस ने कहा कि 3 ट्रक भेजते हैं, शायद कभी हमारे काम आए टैक्स के सिलसिले में या दूसरी चीजों में, तो तुमने वो बात मान ली और 3 ट्रक भिजवा दिया।
ये तो मुझे भी मालूम नहीं था कि अगर कोई खैर काम करते हैं और मीलों दूर से कोई बात जहन से गुजरे तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा।
हाँ, जवाब देना पड़ेगा। पैगंबर अकरम ने फरमाया है, लिकुल इमरेन मा नवा बिनियत है, इंसान के लिए सवाब उसकी नियत का है। तो फिर वो सोच भी शामिल है अपनी कस्द नियत के साथ। ला अमल इल्ला बिनियत, कोई अमल बगैर नियत के कबूल नहीं किया जाएगा। जैसे उसी वक्त तुमने एक दूसरा काम भी किया था लेकिन खुदा के लिए था, तुम्हारे लिए मुश्किल भी नहीं था, तुम्हें खुद भी खबर नहीं होगी कि वो अमल तुम्हारे आज के लिए काम आ सकता है।
कौन सा काम?
वो फैक्ट्री का कारगर याद है, जब तुम वो ट्रक जलजला ज़दा लोगों के लिए भेज रहे थे, तुम्हारे पास आके रोने धोने लगा कि जरा अपनी फैमिली से मुझे मिलने जाना है।
मुश्तबा की बात कर रहे हो? हाँ मुझे याद है। हाँ तो मैंने इजाजत दे दी थी आपको, याद है फिर क्या हुआ था?
हाँ
जब वो अपनी फैमिली को वहां लेके आया था तो तुमने उन्हें जगह दी थी, फैक्ट्री में रहने की इजाजत दी थी।
खुदा तुम्हें जज़ाए खैर।
मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अभी भी वही तुम्हारा अमल खैर तुम्हारे बरज़ख में जाने का जवाब बनेगा।
क्या इसी वक्त?
लेकिन हाजी एक बात याद रहे कि वहां ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा।
हो सकता है कि ये जाना ज्यादा मुश्किल ना हो?
मैं पहले भी कह चुका हूं हाजी, गुनहगार इंसान की रूह को बरज़ख में अज़ाब का सामना करना पड़ेगा।
अरे भाई मैं बेचारा तो अभी जिंदा
हूं। लेकिन अभी तुम्हारी रूह वहां जा तो रही है, अभी तुम्हारे गुनाह तो माफ नहीं हुए, इसीलिए अभी तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब तक रजायत नहीं लोगे तब तक अजाब के शिकार रहोगे, इसीलिए मैं कहता हूं वहां पर ज्यादा रुक नहीं सकते।
السلام علیکم، خدا کی رحمت ہو آپ پر۔
وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔
وعلیکم
بابا السلام جان۔ امی،
ارے فتح، یہ کیا شکل بنا رکھی ہے تم نے اپنی بیٹا؟
میں ہوں فتح، آپ کا بیٹا۔ مجھے معلوم ہے کہ کیوں یہاں ہو۔
آپ کا بیٹا موت کے بہت قریب ہے۔
اللہم اغفر لنا ذنوبنا۔
انشاءاللہ، لیکن مغفرت اور معافی کے لیے ماں باپ کی رضایت اور دعا ایک اہم شرط ہے۔ ہم یہاں معافی کے لیے آئے ہیں۔
معافی؟ آپ تو آسمانی ہیں، آپ تو جانتے ہوں گے کہ اس نے کیا کیا، کیسے اس کے ساتھ یہاں آ گئے۔
آپ کو علم ہے کہ فتح نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ والدین کے حلال لقمے اور حلال غذاؤں کی وجہ سے اپنی زندگی میں اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے خدا نے آخری لمحوں میں آپ سے معافی مانگنے کی اجازت دی ہے، اور اس وقت اس کی امید صرف آپ دونوں پر ہے۔
میں ہمیشہ اپنے بیٹے سے راضی رہا ہوں، سوائے اس کے کہ اس نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا۔ بابا جان، میں نے آپ کے حکم کے مطابق تو عمل کیا۔ میرے حکم کے مطابق یا اپنے دل کے کہنے پر؟
جانتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں نہیں رہ گئے تو کیسے اس نے آپ کی وصیت کو ٹھکرا کر بیچاری لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔
وہ اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، اگر اسے موقع ملے
تو شاید بھرپائی کرنے کی بھی کوشش کرے۔
اس کو بہت موقع ملے تھے لیکن اس نے وہ سب ضائع کر دیے۔ امی، میری امی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس وقت ایک اور موقع دیں۔ پلیز مجھے صرف ایک موقع دیں اور اس طرح مرنے نہ دیں۔
محجوب، اسے معاف کر دو۔
تم اسے معاف کرنا چاہتی ہو جبکہ جانتی ہو کہ اس نے شریفہ کے حق میں کتنا ظلم کیا؟ मैं उसके हक को नाहक नहीं करना चाह रहा था, वो खुद भी राजी थी।
फतहा, अब भी मानने को तैयार नहीं हो?
शरीफा, शरीफा, शरीफा।
बाबा जान, अम्मी जान, आप ही गवाह रहेगा कि आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया।
खुदा के वास्ते हमें इसे इस हाल में देखने से माफ ही रखिए।
अगर उसे माफ न किया तो उसकी हालत इससे भी बदतर होगी।
महजूस, माफ कर दो। मैंने अपने बेटे को माफ किया, मैं राजी हूँ उससे। तुमको उस पर तरस नहीं आ रहा?
और तुम्हें शरीफा पर तरस नहीं आ रहा?
क्यों नहीं, लेकिन इसे माफ कर दो।
ठीक है, मैं भी माफ करता हूँ, लेकिन अपना हक इस शर्त के साथ कि अपने वादे पर अमल करेगा और शरीफा के हक को वापस लौटाएगा।
फतहा, भूलना मत, यहाँ पर जहाँ हम हैं, हमारे किए हुए वादों से भी सवाल होता है।
वाउफु बिल अहद, इन्नल अहद कान मसूला। क्यों चले गए?
चूंकि तुम्हें इस हाल में नहीं देख पा रहे थे।
मेरी तबीयत अब बेहतर है।
चूंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें माफ कर दिया है, तबीयत और भी बेहतर होगी कि जब शरीफा के हक में हुए जुल्म का भी इजाला कर सकोगे। मैं तुमको 40 साल पहले ले जाना चाहता हूँ अपने आबाई घर। मैं वो चीज़ें तुम्हें याद दिलाऊंगा जिसे तुम भूल गए हो।
सलाम अलैकुम फत्ता साहब, बहुत अच्छा किया जो आप आए। अम्मी जान 2 दिन से आपका इंतजार कर रही है।
मैं और पहले आना चाह रहा था, मुमकिन नहीं हुआ। बाबा की तबीयत कैसी है?
क्या बताओ,
मतलब इतनी खराब है?
आ गए मेरे बेटे।
अम्मी जान,
कैसे हो बेटा? खुदा का शुक्र है तुम आ गए।
ये वही दिन है जब बाबा जान ने
तो फिर क्यों इतनी देर की मेरे दिल के टुकड़े? और तुम्हें अंदाजा है कितनी देर से आए हो तुम? पिछले दिनों जब भी कुछ बोल पाए हैं तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया है।
अम्मी जान, मुझे बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाई है, छोड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जब मैंने परसों फोन किया था तो आपने ये नहीं बताया कि उनकी तबीयत इतनी खराब है।
कल रात से तबीयत ज्यादा खराब हुई है। मुझे डर था कि मरने के बाद तुम ना पहुंचो।
मतलब इतनी तबीयत खराब है उनकी?
रात में डॉक्टर कह रहा था कि शायद सुबह तक ही रह पाए। फतहा, अगर तुम्हारे पाप अब तक जिंदा हैं तो तुम्हारी वजह से। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी नजरें मांगी ताकि तुम जल्दी आ जाओ। मेरी जान तुम पर कुर्बान, शायद तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। जो जो भी कहें तुम इनकी बात मत टालना।
अम्मी जान, मैंने कब उनकी बात टाली है, जब टालूंगा।
मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार मामला अलग है। तुम्हारे पापा ने अब तक इसलिए इंतजार किया कि अपनी आखिरी बातें तुमसे कहना चाह रहे थे, कहीं इनका दिल मत तोड़ना।
ये कैसी बात है अम्मी जान? अब इसके बाद
मुझसे वादा करो, कहो मेरी कसम, अपने बाप की कसम।
ठीक है, जरूर कहिए तो कसम खाऊं। आप परेशान ना हो। बाबा जान,
उठो, तुम्हारा बेटा आया है। पता
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ गए।
माफ कीजिएगा, मैंने बहुत देर की। आपकी तबीयत कैसी है?
अब जब तुम आ गए हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मरने से पहले तुम्हें अपने सराहने देखना चाह रहा था, अपने पास देखना चाह रहा था।
ये कैसी बात है बाबा जान, मैं आपको तरह ले जाने आया हूँ।
नहीं बेटा नहीं, मैं एक दूसरे सफर के लिए तैयार हुआ हूँ। मैंने खुदा से सिर्फ यही चाहा है कि तुमसे एक बार मिल सकूँ।
बाबा जान, खुदा के वास्ते आप ऐसी बातें मत करें।
बेटा, मौत बरहक है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमको भी रिजा इलाही पर राजी होना चाहिए।
हाँ जी, अब जब आपका बेटा आ गया है तो ऐसी बातें ना करें, आप भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
हाँ तुम ठीक कहती हो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तुम लोग अपना अपना काम करो, हम दोनों बाप बेटे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो।
ठीक है, तो आप भी वादा करें कि मरने वरने की बातें नहीं करेंगे।
ठीक है भाई,
मैं चलती हूँ।
बेटा, मैंने एक वसीयत नामा लिखा है।
बाबा जान, खुदा के लिए आपको तो कुछ नहीं हुआ है।
मेरी बात मत काटो बेटा, मेरे पास ना ज्यादा वक्त है और ना ही ज्यादा सांसें। मैंने वसीयत लिखकर नीचे तहखाने के अंदर एक संदूकचे में रख दी है, लेकिन ये बात जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी आखिरी गुजारिश है, मुझसे वादा करो इस पर अमल करोगे।
क्यों नहीं बाबा जान, जैसा आप कहें मैं वादा करता हूँ।
तुम्हारी अम्मी के लिए मैं परेशान नहीं हूँ, चूंकि मुझे मालूम है कि तुम हमेशा उनके साथ रहोगे, लेकिन शरीफा के लिए, मैं शरीफा के लिए बहुत परेशान हूँ।
ये कैसी बात है बाबा जान, शरीफा मेरी बहन जैसी है।
हाँ मुझे मालूम है, वो तुम्हारी बहन की तरह है, लेकिन बहन नहीं है। ये तुमको याद रहना चाहिए, उस लड़की ने बहुत सी मुसीबतें और मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। सिर्फ 7-8 साल की थी कि जिस वक्त उसके माँ बाप और उसकी पूरी फैमिली जलजले में उसके सामने मर गए। जब मैंने और तुम्हारी माँ ने उसको अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखा तो ये चाहा कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई फर्क नहीं रखेंगे, लेकिन अब डरता हूँ, मुझे इसका डर है कि अब वो बेसहारा हो जाएगी।
बाबा जान, क्या मैंने अब तक कोई कसर छोड़ी है? क्या शरीफा के सिलसिले में मैंने कोई कोताही की है? अब इससे भी ज्यादा तवज्जो दूंगा, मैं उसके साथ हूँ।
लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साहिबान बनो। मैं चाहता हूं कि अगर अब तक वो तुम्हारी बहन की तरह थी, आज के बाद तुम्हारी बीवी और घरवाली बनकर रहे मेरे बेटा।
ये क्या कह रहे हैं बाबा जान? मैं शरीफा, हम एक साथ पले बड़े हैं बाबा, वो मेरी हकीकी बहन की तरह है।
वो तुम्हें चाहती है बेटा, अगर एक बार उसकी आंखों में देखो तो तुम्हें भी यकीन आ जाएगा बेटा। मैं अभी इस आखिरी मौके पर बगैर परेशानी और आराम और सुकून से मरना चाहता हूँ कि जब सुनूं कि शरीफा की जिंदगी समर गई है।
लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैंने अब तक कभी आपकी बात नहीं टाली है, लेकिन इस बार मैं वादा नहीं कर सकता। आप जो भी कहेंगे मैं सराखों पर कबूल करूंगा, दिनों चार से तस्लीम करूंगा, लेकिन ये मुझसे ना चाहे।
ये मेरी और तुम्हारी अम्मी की दिली ख्वाहिश है। मेरी आरजू को मेरे साथ दफना होने दो।
बाबा जान, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, अगर आप कहें तो मैं जिंदगी भर शरीफा की गुलामी कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे ये ना कहिए कि उसको बहन के अलावा किसी और नजर से देखो।
ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा।
कैसा वादा बाबा? जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं, आपकी कसम, अम्मी की कसम, अपनी जान की कसम।
मैंने इस घर का छठा हिस्सा शरीफा के नाम किया है और बकिया जायदाद के बारे में वसीयत नामे में तذکرہ कर चुका हूं कि कैसे तकसीम की जाए। तुमको वादा करना होगा कि मेरी वसीयत के मुताबिक अमल करोगे। अगर इसके खिलाफ कुछ हुआ तो मैं राजी नहीं हूंगा, मैं राजी नहीं हूंगा तुमसे।
वादा करता हूं बाबा, आपकी कसम, अम्मी जान की कसम, अपनी जान की कसम।
परेशान ना हो बेटा, रो मत, जाओ उन्हें यहां बुलाओ।